सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं मिजोरम की यात्रा से। तो मिजोरम में एक खास उत्सव हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है चपचारकोट। और इस महोत्सव में मिजोरम की विरासत, कला, संस्कृति, खान पान का हमें एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो इस वर्ष भी मिजोरम में ये खास चपचारकोट उत्सव मनाया गया और इस विषय में हमारे संवाददाता ने हमें एक खास रिपोर्ट भेजी है, हम आपको सुनवा रहे हैं।
चपचारकोट मिजोरम का एक प्रमुख वसंत उत्सव है जो मिजो संस्कृति की झलक दिखाता है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला और खान पान का विशेष महत्व होता है। ये त्योहार हर साल मार्च में मनाया जाता है और लोगों को अपनी परंपराओं तथा विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ लाता है। मिजोरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। मिजो समुदाय का जीवन लंबे समय से खेती और प्रकृति के साथ जुड़ा रहा है। यही जुड़ाव चपचारकोट में साफ दिखाई देता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दौरान लोग उत्साह के साथ नृत्य करते हैं, पारंपरिक संगीत प्रस्तुत करते हैं और सामूहिक रूप से त्योहार का आनंद भी लेते हैं। ये बाहरी लोगों के लिए भी मिजो संस्कृति को समझने का एक शानदार अवसर होता है। जोनुन जे मावी इनरेमना मिजो नैतिकता मेल मिलाप विषय के साथ ये राज्य का सबसे बड़ा वसंत उत्सव एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों के बाद संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, जिन्हें कुट पा यानी त्योहार का प्रमुख माना गया, उन्होंने एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल वीके सिंह और कला तथा संस्कृति मंत्री सी लाल साविवोंगा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिजो पहचान की सबसे बड़ी विशेषता मेल मिलाप की भावना है। उन्होंने बताया कि मिजो परंपराओं में बुजुर्गों का सम्मान, निस्वार्थ सेवा, आपसी समझ और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूल्य समाज में शांति और एकता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिजो पूर्वजों की सीख आज भी समाज और आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन देती है। इस भव्य आयोजन में विदेशों से आए पर्यटकों, भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों और पड़ोसी राज्यों के मिजो समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। उत्सव के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य मिजो संस्कृति को संरक्षित और प्रदर्शित करना था। इनमें हैंडलूम, वस्त्र और हस्तशिल्प प्रदर्शनी, फूड प्रोसेसिंग के प्रदर्शन, फूड कोर्ट, फूलों की प्रदर्शनी, जीवंत संग्रहालय जहां पारंपरिक मिजो जीवन शैली को दर्शाया गया, फोटो और पेंटिंग प्रदर्शनी और चपचारकोट पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन शामिल था। चपचारकोट आमतौर पर मार्च में मनाया जाता है, जब जंगल की सफाई का काम पूरा हो जाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मिजोरम से आइजैक की रिपोर्ट के साथ मैं निखिल कुमार।
श्रोताओं, अब हम जानते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक अद्भुत उत्पाद के बारे में, एरी सिल्क। ये अपनी तरह का एक खास रेशम है जो असम और मेघालय में पैदा किया जाता है और इस रेशम की पहचान अब देश विदेश में बढ़ती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल और साथ में एक बहुत आकर्षक रेशम माना जाता है। तो एरी सिल्क क्या है, किस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है और कैसे ये देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है, हम आपको एक विशेष रिपोर्ट के जरिए ये सुनवाने जा रहे हैं।
मेघालय मेघालय के पारंपरिक एरिसिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। समानता शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरी सिल्क को मिला GI टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरी सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30-40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरी सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरी सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।
श्रोताओं, आप सभी जानते ही हैं कि पूर्वोत्तर भारत की एक अद्भुत विरासत वहाँ की शिल्पकला और वहाँ की बुनाई कला है। यहाँ की शिल्पकला और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से खास प्रयास किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक खास मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ बुनकर और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने इस मेले के बारे में बताया है और साथ ही किस तरह से बुनकर और शिल्पकार इस मेले के माध्यम से बाजार से जुड़ रहे हैं, इस बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
सरकार की ओर से बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक खास बाजार उपलब्ध कराने का त्रिपुरा में प्रयास हुआ है। त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वाशा मेला ग्राउंड के अर्बन हार्ट में चल रहा हथकरघा मेला शिल्पकारों और बुनकरों को एक अवसर प्रदान कर रहा है। ये राज्य स्तर का मेला स्थानीय कारीगरों को देश के बड़े बाजार से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर दे रहा है। इसमें भाग लेने वालों का उत्साह इस मंच की अहमियत को साफ दर्शाता है। देश भर में कई पीढ़ियों से कारीगर अपने आसपास मिलने वाली प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके बेहतरीन कलाकृतियां बनाते आए हैं। जब इन हाथ से बनी सामानों को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के साथ जोड़ा जाता है तो आम लोगों में उनकी मांग और भी बढ़ जाती है। अगरतला के पूर्वाशा स्थित अर्बन हाट में आयोजित ये हथकरघा मेला सरकार की उन प्रयासों का अच्छा उदाहरण है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक कला को बड़े बाजार से जोड़ना और कारीगरों को स्थायी आजीविका देना है। इस मेले का आयोजन राज्य के हथकरघा हस्तशिल्प और रेशम विभाग ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की आर्थिक सहायता से किया है। करीब दो हफ्तों तक चलने वाले इस मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से कारीगर आए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के बोलपुर से आए कारीगर गुलाम मुस्तफा भी शामिल हैं, जो पारंपरिक कंथा कढ़ाई वाले सुंदर कपड़े लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से आए कारीगर प्रदीप तांती, जो जूट और नारियल के रेशे से उत्पाद बनाते हैं, कहते हैं कि ये उनका अगरतला का पहला दौरा है और यहाँ छोटे छोटे हस्तशिल्प सामानों की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। त्रिपुरा की जनजातीय समुदाय से जुड़ी हथकरघा कारीगर लता देव वर्मा बताती हैं कि पारंपरिक जनजातीय कपड़े उनके उत्पादों का मुख्य हिस्सा हैं। वे अपने काम को दिखाने के लिए अलग अलग मेलों में जाती रहती हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अजय लियू न्यूमाई, जो निजी कारणों से त्रिपुरा आई थी और मेले के बारे में सुनकर कहती हैं कि इस तरह का आयोजन देखकर उन्हें बहुत खुशी है। उनका मानना है कि इस मेले में महिला कारीगरों की बड़ी भागीदारी समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की आयोजन ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला के जरिए आजीविका के नए रास्ते खोजने का मौका देते हैं। खास तौर पर ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे प्रयास विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह।
श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के कई संस्करणों में हम आपको नागालैंड की विविध जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं नागालैंड की एक खास जनजाति लोथा जनजाति के बारे में, जो नागालैंड के ओखा जिले में निवास करती है, और इस जनजाति की क्या परंपराएं, विरासत और यहाँ की विशेषताएं हैं, इस बारे में हम इस विशेष रिपोर्ट में जानेंगे, जो हमारी संवाददाता असोनो ने हमें कोहिमा से भेजी है। आइए सुनते हैं।
आज हम आपको लेकर चलते हैं नागालैंड के खूबसूरत वोकहा जिले में, जिसे लैंड ऑफ प्लेंटी यानी समृद्धि की भूमि कहा जाता है। ये क्षेत्र नागा समुदाय की एक प्रमुख जनजाति लोथा जनजाति का घर है, जो अपनी समृद्ध परंपराओं, रंग बिरंगे त्योहारों और मजबूत सामाजिक एकता के लिए जानी जाती है। हरियाली और उपजाऊ जमीन से घिरे इस क्षेत्र में लोथा जनजाति के लोग लंबे समय से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीते आए हैं। उनकी पहचान उनकी मौखिक परंपराओं से जुड़ी है, जिनमें उनके पूर्वजों, उनके स्थानांतरण और बसने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। लोथा समाज में जीवन का केंद्र गांव होता है, जहां हर समुदाय एक परिवार की तरह जुड़ा रहता है और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में चलता है। उनकी आजीविका का मुख्य आधार खेती है, खासकर झूम खेती, और चावल उनका मुख्य भोजन है। त्योहारों के समय उनकी संस्कृति और भी जीवंत हो जाती है, खासकर तोखू एमोंग त्योहार के दौरान फसल काटने के बाद नवंबर महीने में मनाया जाता है और लोथा जनजाति का एक प्रमुख पर्व है। तोखू का मतलब होता है समूह में एक घर से दूसरे घर जाना और भोजन व पेय साझा करना, जबकि एमोंग का अर्थ है तय समय पर रुकना। ये त्योहार आपसी प्रेम, आभार और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस दौरान लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, पारंपरिक भोजन बनाते हैं, लोक गीत गाते हैं और रंग बिरंगे नृत्य करते हैं। लोथा जनजाति अपने पारंपरिक पहनावे के लिए भी जानी जाती है। रंगीन शॉल, सुंदर मोतियों के गहने और विशेष आभूषण जो उनकी पहचान और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। बुनाई उनकी एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो माँ से बेटी तक सिखाई जाती है। हर घर में अपने कपड़े बनाए जाते हैं, जिनमें शॉल और मेखला पर अलग अलग डिजाइन होते हैं। पहले कुछ खास शॉल केवल उन लोगों के लिए होते थे जिन्होंने समाज में विशेष कार्य किए होते थे, लेकिन समय के साथ ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। हस्तशिल्प भी लोथा जनजाति के जीवन का अहम हिस्सा है। बुनाई, लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और बांस से बने सामान, इन सब में उनकी कला और मेहनत साफ दिखाई देती है। खासकर मिट्टी के मजबूत बर्तन खाना बनाने और रखने के काम आते हैं। बांस और बेंत से बनी टोकरी, मग और सजावटी चीजें उपयोगी होने के साथ साथ आकर्षक भी होती हैं। यहाँ तक कि बांस के ट्यूब, जिन्हें चूंगा कहा जाता है, उनमें त्योहारों के दौरान चावल भी पकाया जाता है। समय के साथ लोथा जनजाति में ईसाई धर्म प्रमुख हो गया है, लेकिन उनकी पारंपरिक मान्यताएं और रीति रिवाज आज भी उनके जीवन का हिस्सा हैं। आज लोथा जनजाति परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर मेल है, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोते हुए बदलाव को भी अपना रही है। उनकी कहानी उनकी पहचान, मजबूती और अपनी जमीन व समाज से गहरे जुड़ाव की कहानी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनुओ की रिपोर्ट के साथ मैं प्रशांत कुमार।
पूर्वोत्तर राज्य के एक खास राज्य की हम सैर पर आपको लिए चलते हैं।
आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में बसा एक समृद्ध संस्कृति और विविधता वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, विविधता और पर्यटन का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींच लेता है। आइए ले चलते हैं आपको सिक्किम की इस अद्भुत यात्रा पर। सिक्किम राज्य अलग अलग समुदायों, धर्मों और परंपराओं का संगम है। यहाँ मुख्य रूप से लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदाय निवास करते हैं, जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। लेपचा समुदाय, जिन्हें राज्य का मूल निवासी माना जाता है, प्रकृति पूजक रहे हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती मूल के हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि नेपाली समुदाय में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाले त्योहार राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। लोसार जो तिब्बती नववर्ष है, लुसोंग, सागा दावा, फांग लैप्सोल, दशैन और तिहाड़ दिवाली यहाँ के दूसरे प्रमुख त्योहार हैं। इन उत्सवों के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करते हैं। सिक्किम में नेपाली, भूटिया, लेपचा, लिंबू, हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं। नेपाली भाषा यहाँ की सबसे आम भाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। इसके अलावा तिब्बती, शेरपा और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती हैं। इस राज्य की हस्तशिल्प परंपरा समृद्ध और विविधताओं से भरी है। यहाँ के कारीगर ऊनी कालीन, चोकसी टेबल, थंका चित्रकला और बांस बेंत के उत्पादों के निर्माण में निपुण हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुटीर उद्योग संस्थान इन हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और इन्हें प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस राज्य का भोजन भी पारंपरिक है, जो नेपाली, तिब्बती और भूटानी व्यंजनों का मिश्रण है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में मोमो, थुक्पा गुंडक, सिंकी, बांस शूट और किण्वित सोयाबीन से बने व्यंजन शामिल है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और स्थानीय लोग तोंगबा, जो कि बाजरा से बना एक पेय होता है, उसका भी भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है, 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। सोमगो झील गंगटोक से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पूर्वी सिक्किम में स्थित अरितार इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ खांग चेंदोंगा का लुभावना दृश्य देखा जा सकता है। नाथुला दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। थुमथांग घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है। सिक्किम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना होता है और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय भी उपयुक्त है। सिक्किम राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राज्य की जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। तो यदि आप सिक्किम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस समृद्ध राज्य को अपनी पर्यटन सूची में जरूर शामिल करें।
पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख है। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन है। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला, राज्य की राजधानी, अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।